तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प दस्तावेज पर गौर करने वाले हैं। इसका शीर्षक है युग निर्माण सत्संकल्प। अभी सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन असल में ये 18 संकल्पों की मतलब प्रतिज्ञाओं की एक सूची है, एक तरह से व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव का एक घोषणा पत्र।
और इसका जो मूल विचार है ना, वो बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, कि दुनिया को बदलने की जो शुरुआत है
हाँ
वो हमेशा खुद को बदलने से होती है।
हाँ खुद से।
बिल्कुल, जैसा कि दस्तावेज में बार बार आता है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हमारी आज की सारी पड़ताल इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमेगी।
बिल्कुल, और यहाँ एक बड़ी गजब की बात है जिससे हम शुरू कर सकते हैं। ये दस्तावेज संकल्प को मतलब एक पक्के इरादे को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत कहता है। इसकी तुलना उस दिव्य इच्छा से की है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरी बात लगती है। चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। तो ये संकल्प आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक मजबूत इच्छा शक्ति है?
देखिए, स्रोत कहता है कि यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है। जब हमारी इच्छा मतलब बुद्धि की कसौटी पर कसी जाती है, तब वो एक दृढ़ निश्चय, एक संकल्प बन जाती है।
अच्छा,
और जब मन किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह से टिक जाता है, तो फिर सफलता अपने आप खींची चली आती है। यहाँ एक बहुत गहरी दार्शनिक बात भी कही गई है,
हाँ
कि जैसे परमात्मा के एक संकल्प, एको अहम बहुस्याम, मतलब मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, इससे ये पूरी सृष्टि बनी।
अरे वाह,
उसी तरह आज हम जो भी प्रगति देखते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कला, विज्ञान, वो सब इंसानी संकल्प का ही तो नतीजा है।
सही बात है।
दस्तावेज में इसे एक प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष तक कहा गया है, मतलब एक ऐसा पेड़ जो हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदल देता है।
और इसी नींव पर मिनिलक का है पहला संकल्प आधारित है। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। अब ये सुनने में तो एक आम धार्मिक बात लगती है, लेकिन जिस तरह इसे समझाया गया है वो कमाल का है।
हाँ, यहाँ ईश्वर की जो अवधारणा है वो बहुत ही रोचक है। ये किसी ऐसे भगवान की बात नहीं कर रही है जिसे पूजा पाठ या क्या कहते हैं, चापलूसी से खुश किया जा सके,
अच्छा,
बल्कि ईश्वर को एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह बताया गया है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। स्रोत में एक बहुत तीखी बात कही गई है, कि अगर ईश्वर सिर्फ स्तुति करने वालों से खुश होने लगे तो उसे खुशामदी कहा जाएगा, न्यायकारी नहीं।
अरे ये परिभाषा तो भक्ति की पूरी धारणा को ही पलट देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ईश्वर को हमारी प्रार्थनाओं से ज्यादा हमारे नैतिक कामों की परवाह है।
बिल्कुल, ये धर्म को कर्म कांड से हटाकर सीधे सीधे नैतिकता से जोड़ देता है। इस कहता है कि सच्ची आस्तिकता का प्रमाण तिलक या माला नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म है, उसकी भावनाएं हैं। इसके शब्द है, पापों से डर और पुण्य से प्रेम, यही तो भगवत भक्त के प्रधान चिन्ह है।
मतलब आपकी भक्ति आपके चरित्र में दिखनी चाहिए, दिखावे में नहीं।
बिल्कुल,
ठीक है, तो अगर संकल्प इतनी बड़ी शक्ति है और ईश्वर का अनुशासन नैतिकता है, तो उसका सबसे पहला इस्तेमाल कहाँ करना है?
दस्तावेज कहता है अपने आप पर,
खुद पर।
और इसकी शुरुआत होती है हमारे शरीर से।
दूसरा संकल्प है शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे।
देखिए, इसमें एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। ये शरीर को ना तो भोग विलास का साधन मानता है,
और न ही उसकी उपेक्षा करने को कहता है।
बिल्कुल, शरीर को भगवान का मंदिर कहना ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। जैसे हम किसी मंदिर को गंदा रखना अधर्म मानते हैं, ठीक उसी तरह इस संकल्प के अनुसार शरीर को आलस या बुरी आदतों से बीमार रखना भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है।
और उसका दंड फिर बीमारी के रूप में मिलता है।
हाँ, पीड़ा के रूप में।
शरीर को मंदिर मानना तो समझ आता है, लेकिन मन का क्या? मन तो सबसे चंचल चीज है। एक स्वस्थ शरीर में भी तो एक मतलब शैतानी दिमाग हो सकता है।
बिल्कुल, हो सकता है।
तो क्या सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ने या अच्छे लोगों के साथ रहने से सच में बुरे विचार रुक सकते हैं? यह थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता?
सवाल बहुत अच्छा है, और दस्तावेज इसका जवाब भी देता है। तीसरा संकल्प इसी पर है, कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखनी होगी। लेकिन ये इसे सिर्फ एक पैसिव एक्टिविटी की तरह नहीं देखता, इसका सुझाव ज्यादा एक्टिव है। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उस पर सोचना, मनन करना है।
और सत्संग?
और सत्संग का मतलब सिर्फ अच्छी संगत में बैठना नहीं, बल्कि उन गुणों को अपने अंदर उतारना है।
तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए मेरे मन में किसी के लिए बहुत गुस्सा या जलन का भाव आ रहा है, तो मैं क्या करूं?
तो दस्तावेज एक व्यवहारिक सुझाव देता है। वो कहता है कि जब भी मन में कोई बुरा विचार आए तो उसे जबरदस्ती एक शक्तिशाली अच्छे विचार से काटो।
अच्छा,
जैसे?
जैसे
क्रोध के विचार को करुणा के विचार से काटो, या नफरत के विचार को आत्मीयता के विचार से। ये एक तरह की मानसिक कसरत है, मेंटल हाइजीन।
शुरुआत में तो मुश्किल लगेगा।
हाँ बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे मन को सही दिशा में मोड़ने की आदत पड़ जाती है।
यह आत्मनियंत्रण की बात चौथे संकल्प में और भी साफ हो जाती है, जिसमें चार तरह के संयम की बात की गई है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम मतलब पैसे का, समय संयम और विचार संयम। मुझे इसमें समय संयम वाली बात बहुत दिलचस्प लगी। कहा गया है कि जो समय देवता की अवहेलना करते हैं वे जीवन को निरर्थक बिताकर चलते बनते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल सही।
आज के जमाने में तो हमारा समय देवता शायद हमारा स्मार्टफोन है।
हाँ।
और हम उसकी पूजा में पूरा दिन बिता देते हैं।
बिल्कुल सही कहा। और ये चारों संयम एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह।
कैसे?
अगर आपके विचारों में संयम नहीं तो आपकी इंद्रियों में भी नहीं होगा। आप कुछ भी खाते पीते रहेंगे, जब इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तो शरीर बिगड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे जिससे आपका पैसा यानी अर्थ जाएगा
और समय भी बर्बाद होगा।
हाँ, तो ये जीवन की जो संपत्ति हमें मिली है, विचार, इंद्रियां, पैसा और समय, ये उन चारों स्तंभों को सहेजने की बात करता है।
आत्मनियंत्रण की बात तो ठीक है, लेकिन इसका असली टेस्ट तो तब होता है जब हम दूसरों से मिलते जुलते हैं। तो क्या ये दस्तावेज इस पर भी कोई रोशनी डालता है कि ये व्यक्तिगत सुधार समाज में कैसे दिखेगा?
बिल्कुल, और यहीं से ये दस्तावेज व्यक्तिगत दायरे से निकलकर सामाजिक दायरे में आता है। पांचवा संकल्प एक शानदार उपमा देता है। हम सब एक ही नाव में बैठे हैं और अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। अगर नाव में छेद होगा तो सब डूबेंगे, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो।
और ये सुख और हित के बीच एक बड़ा जरूरी फर्क भी बताता है। मतलब जो चीज मुझे खुशी दे, जरूरी नहीं कि वो मेरे या समाज के हित में भी हो।
एकदम सही। दस्तावेज कहता है कि सुख हमारी व्यक्तिगत आदतों पर निर्भर हो सकता है। जैसे किसी को ज्यादा सोने में सुख मिलता है,
किसी को ज्यादा खाने में।
हाँ, लेकिन हित हमेशा शाश्वत सिद्धांतों से जुड़ा होता है, जैसे स्वास्थ्य और अनुशासन। तो व्यक्तिगत सुख या स्वार्थ के लिए जब हम सामूहिक हित को नजरअंदाज करते हैं, वहीं से समाज में समस्याएं शुरू होती हैं।
इसका एक बहुत सीधा और सरल नियम 11वें संकल्प में दिया गया है, जो शायद हम सब ने बचपन में सुना भी है।
हाँ, वो गोल्डन रूल।
दूसरों के साथ वो व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं।
ढूंढता है जो दहेज ना ले, लेकिन जब अपने बेटे की शादी की बात आती है तो वो ज्यादा से ज्यादा दहेज की मांग करता है।
ये तो होता है।
दस्तावेज इसे दुमुही नीति कहता है और सवाल पूछता है कि जब समाज में हर कोई ऐसी दोहरी नीति अपनाएगा तो शांति कैसे आएगी।
लेकिन क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत पाखंड है या इसके पीछे गहरा सामाजिक दबाव भी काम करता है? मतलब क्या सिर्फ एक व्यक्ति की अपनी नीति बदलने से समाज की ये प्रथा बदल सकती है?
यह एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब 9वें संकल्प में छिपा है, जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण संकल्पों में से एक है। वो कहता है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे।
मतलब गलत तरीके से जीतने से बेहतर है सही रास्ते पर चलकर हार जाना।
हाँ, ये आज की जीतना ही सब कुछ है वाली सोच के बिल्कुल खिलाफ है। जब एक व्यक्ति सामाजिक दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देता है, भले ही उसे असफलता मिले, तो वो एक मिसाल कायम करता है।
और इसे समझाने के लिए राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों का उदाहरण भी दिया गया है। उन्हें तात्कालिक रूप से शायद जीत नहीं मिली,
नहीं मिली,
लेकिन आज हम उन्हें उनकी हार के लिए नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों पर टिके रहने के लिए याद करते हैं।
बिल्कुल, उनकी हार भी किसी भी जीत से ज्यादा गौरवशाली मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक बड़े आदर्श के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया था।
और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि हम लोगों को आंकते कैसे हैं। 10वां संकल्प कहता है कि किसी इंसान को उसकी सफलता या पैसे से नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों से आंकना चाहिए। मुझे हमेशा ये बात परेशान करती है कि हम अक्सर किसी की अमीरी या सफलता देखकर ही उसका सम्मान करने लगते हैं, भले ही पता हो कि उसने ये सब गलत तरीकों से पाया है।
यह चमत्कार को नमस्कार करने की हमारी प्रवृत्ति है, जिस पर ये संकल्प सीधा प्रहार करता है। स्रोत कहता है कि जब हम बेईमानी से अमीर बने किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उसे समाज में ऊंचा दर्जा देते हैं, तो हम अनजाने में उसके अपराध में भागीदार बन जाते हैं।
भागीदार? कैसे?
हम दूसरों को ये संदेश देते हैं कि तरीका चाहे जो भी हो, सफल होना ज्यादा जरूरी है।
तो इसका समाधान क्या है?
समाधान है सामाजिक मूल्यांकन के मापदंड को बदलना। अगर समाज आदर्शों पर चलने वाले गरीब व्यक्ति का सम्मान करे और एक बेईमान करोड़पति का तिरस्कार करे
तो सदाचार को अपने आप ताकत मिलेगी।
हाँ, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है।
तो ठीक है, हमने व्यक्तिगत नैतिकता की बात की, सामाजिक आचरण की बात की, लेकिन इस दस्तावेज का नाम तो युग निर्माण सत्संकल्प है। तो इन सब का मतलब क्या है? हम इस युग को, इस समय को कैसे बदल सकते हैं?
इसका रास्ता 14वें संकल्प में दिखाया गया है। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। ये आंख बंद करके चली आ रही परंपराओं पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है। दस्तावेज में बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि विवेकहीन होकर परंपराओं के पीछे चलना भेड़ों के झुंड की तरह है,
जो बस एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं चाहे आगे खाई क्यों ना।
जैसे कोई आधुनिक उदाहरण?
हाँ बताइए।
जैसे शादियों में या मृत्यु भोज में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने की परंपरा, ये एक सामाजिक दबाव बन जाता है और कई परिवार इसकी वजह से कर्ज में डूब जाते हैं।
सही बात है।
यहाँ विवेक का इस्तेमाल करने का मतलब है ये सवाल पूछना, क्या ये परंपरा आज के समय में जरूरी है? विवेक हमें परंपराओं का सम्मान करना सिखाता है, उनका गुलाम बनना नहीं।
और सिर्फ विवेक का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है, 15वां संकल्प तो और भी आगे जाता है। ये कहता है कि सज्जनों को यानी अच्छे लोगों को संगठित होना होगा और अनीति से लोहा लेना होगा। ये तो बहुत एक्टिव भूमिका की मांग कर रहा है। ये सिर्फ अच्छा होने तक सीमित नहीं है बल्कि बुराई से लड़ने की बात है।
हाँ, ये एक धर्म युद्ध का आह्वान है, लेकिन ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि समाज के अंदर की कुरीतियों, अंधविश्वासों और अन्याय के खिलाफ है।
जैसे
खर्चीले विवाह, जातिगत भेदभाव, नशाखोरी। ये संकल्प कहता है कि सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि ये चीजें गलत हैं, बल्कि इन्हें बदलने के लिए संगठित होकर प्रयास करना होगा। ये मैदान में उतरने की बात है।
ये सब सुनने में बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन अक्सर लोग ये कहकर पीछे हट जाते हैं कि अरे हम अकेले क्या कर सकते हैं, या जो भाग्य में लिखा है वही होगा।
और इसी सोच को तोड़ने के लिए 17वां संकल्प है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है।
अच्छा,
ये भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय पुरुषार्थ पर, मतलब कर्म और प्रयत्न पर जोर देता है। दस्तावेज के अनुसार हमारा कल का किया हुआ पुरुषार्थ ही आज हमारा भाग्य बनकर सामने आता है।
मतलब कोई ब्रह्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते?
नहीं, हम अपने कर्मों से अपना भाग्य हर रोज खुद लिखते हैं।
तो मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, न भाग्य का न परिस्थितियों का। और यहीं पर 18वां और अंतिम संकल्प आता है, जो इस पूरे दस्तावेज का सार है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।
क्या बात है।
मतलब कोई मसीहा बाहर से नहीं आएगा, बदलाव की पूरी जिम्मेदारी और शक्ति हर एक व्यक्ति के अपने हाथों में है। तो हमने एक अकेले संकल्प के विचार से शुरू किया था और वहां से व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के एक पूरे खाके तक का सफर तय किया। शरीर के स्वास्थ्य से लेकर मन के नियंत्रण तक, सामाजिक न्याय और रूढ़ियों को तोड़ने तक।
बिल्कुल,
हर पहलू को छुआ गया है।
और इस पूरी दर्शन पद्धति का सार इसी एक वाक्य में छिपा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये एक चक्र की तरह है। एक व्यक्ति समाज को बदलने की कोशिश करता है और एक बेहतर समाज फिर अपने नागरिकों को और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन शुरुआत वो हमेशा व्यक्ति से ही होती है। शक्ति और जिम्मेदारी दोनों व्यक्ति के अंदर ही हैं। बदलाव बाहर से थोपा नहीं जा सकता, वो हमेशा भीतर से ही शुरू होता है।
अंतिम विचार, ये दस्तावेज कहता है कि आने वाले समय में असली बहादुरी तलवार चलाने में नहीं होगी, बल्कि अपनी भीतरी कमजोरियों और समाज की गलत परंपराओं से लड़ने में होगी। आज की दुनिया में जहां बाहरी शोर शराबा बहुत है, हमारे भीतर की वो कौन सी सबसे गहरी मान्यता या परंपरा है जिसे अपने विवेक की कसौटी पर कसना और उसे चुनौती देना ही शायद सबसे बड़ी बहादुरी होगी।